अक्टूबर 2025 की प्रहरी दुर्ग 1925 सौ साल पहले। तस्वीर में दिखाया गया है कि 1925 में इंडियाना राज्य के इंडियाना पुलिस शहर में हुए अधिवेशन के वक्त बहुत सारे भाई बहन एक साथ फोटो ले रहे हैं। चित्र शीर्षक 1925 में इंडियाना राज्य के इंडियाना पुलिस शहर में हुआ अधिवेशन। हम मसीहों ने इस साल का बेसब्री से इंतजार किया है। ये बात 1 जनवरी 1925 की प्रहरी दुर्ग में लिखी थी और उसी लेख में यह भी लिखा था, इस साल में क्या क्या होगा इस बात को लेकर चिंता करने के बजाय हमारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि हम प्रभु की सेवा में क्या कर सकते हैं। बाइबल विद्यार्थी क्यों 1925 का इंतजार कर रहे थे? उन्होंने क्या उम्मीदें लगा रखी थी और जब उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई तब भी वो कैसे जोश से प्रचार में लगे रहे? उम्मीद पूरी होने में हुई देर। बहुत से बाइबल विद्यार्थियों का मानना था कि 1925 में धरती फिरदौस बन जाएगी। क्यों? भाई अल्बर्ट श्रोडर, जो आगे चलकर शासी निकाय के सदस्य बने, ने कहा, हम सोचते थे कि 1925 में अभिषिक्त मसीह स्वर्ग चले जाएंगे और धरती पर अब्राहम और दाविद जैसे वफादार लोगों को फिर से जिंदा किया जाएगा और वो हाकिम बनकर धरती पर सेवा करेंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो कुछ भाई बहन काफी निराश हो गए। फिर भी ज्यादातर बाइबल विद्यार्थी जोर शोर से प्रचार करने में लगे रहे। उन्हें एहसास हुआ कि उनके लिए सबसे जरूरी काम यही है कि वो यहोवा के बारे में गवाही दें। आइए देखें कि सच्चाई को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन्होंने क्या किया। रेडियो की आवाज पहुंची और दूर। इसके पिछले साल यानी 1924 के दौरान बहुत से लोगों ने रेडियो पर WBBR स्टेशन से प्रसारित हमारे कार्यक्रम सुने थे, इसलिए बाइबल विद्यार्थियों ने तय किया कि वो एक और बड़े स्टेशन का निर्माण करेंगे। ये नया स्टेशन इलिनॉय राज्य के शिकागो के पास बनाया गया और इसका नाम रखा गया WORD, यानी वर्ड, जिसका मतलब है वचन। राल्फ लेफलर नाम के एक भाई जिन्होंने इस स्टेशन को बनाने में हाथ बटाया बताते हैं, कड़ाके की ठंड में शाम के वक्त दूर दूर तक लोग रेडियो पर हमारा कार्यक्रम सुनते थे। जैसे उन्हीं शुरुआती दिनों में एक ऐसे परिवार ने हमारा कार्यक्रम सुना जो स्टेशन से करीब 5,000 किलोमीटर यानी 3,000 मील दूर अलास्का के पायलट स्टेशन में रहता था। उन्हें कार्यक्रम इतना पसंद आया कि उन्होंने खत लिखकर भाइयों को शुक्रिया कहा। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम से उन्हें बहुत हौसला मिला और वो परमेश्वर और बाइबल के बारे में बहुत कुछ जान पाए। चित्र शीर्षक बाईं तरफ इलिनॉय राज्य के बटेविया शहर में WORD का ट्रांसमिशन टावर, दाईं तरफ राल्फ लेफलर रेडियो स्टेशन में काम करते हुए। इस स्टेशन के बारे में 1 दिसंबर 1925 की प्रहरी दुर्ग में यह बताया गया, WORD अमेरिका के सबसे बढ़िया रेडियो स्टेशनों में से एक है। इसमें 5000 वॉट का ट्रांसमीटर लगाया गया है, इसलिए यह अमेरिका के पश्चिमी और पूर्वी तटों तक, यहां तक कि क्यूबा देश और अलास्का राज्य के उत्तरी हिस्सों में भी साफ साफ सुनाई देता है। बहुत से लोगों ने स्टेशन पर सच्चाई के बारे में पहली बार सुना और वो इस बारे में और जानना चाहते हैं। इसी दौरान कनाडा में भी बाइबल विद्यार्थी रेडियो के जरिए प्रचार करने की कोशिश में लगे हुए थे। 1924 में सस्कचवान प्रांत के सस्कटून शहर में भाइयों ने CHUC नाम का रेडियो स्टेशन बनाया। ये कनाडा के उन पहले रेडियो स्टेशनों में से एक था जिस पर धार्मिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे। लेकिन 1925 के आते आते वो स्टेशन छोटा बढ़ने लगा, इसलिए वॉच टाउन सोसाइटी ने सस्कटून में ही रीजेंट नाम का एक थिएटर खरीदा, उसे एक रेडियो स्टेशन के तौर पर तैयार किया और फिर वहीं से हमारे कार्यक्रम प्रसारित किए जाने लगे। सस्कचवान प्रांत का इलाका दूर दूर तक फैला है और वहाँ कई छोटे छोटे गांव हैं जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, लेकिन इस स्टेशन की वजह से उन दूर दराज इलाकों में रहने वालों को सच्चाई के बारे में जानने का मौका मिला। जैसे एक छोटे से गांव में रहने वाली मिसेस ग्रैम ने हमें एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने रेडियो पर हमारा कार्यक्रम सुना था और वो बाइबल पर आधारित किताबें मंगाना चाहती थी। भाई जॉर्ज नेश बताते हैं, अपनी चिट्ठी में वो मानो मदद की गुहार लगा रही थी, प्लीज हमें सिखाइए। इसलिए हमें लगा कि उन्हें शास्त्र का अध्ययन किताब के सभी खंड भेजने ही पड़ेंगे। देखते ही देखते मिसेस ग्रहम और भी दूर दूर के इलाकों में प्रचार करने लगी। तस्वीर में जॉर्ज नेश की फोटो है। समझ में आया सुधार। 1 मार्च 1925 की प्रहरी दुर्ग में एक खास लेख प्रकाशित किया गया जिसका शीर्षक था राष्ट्र का जन्म। ये लेख क्यों इतना यादगार था? बाइबल विद्यार्थी कुछ समय से ये जानते थे कि शैतान का एक संगठन है जिसमें दुष्ट स्वर्गदूत, झूठे धर्म, सरकारें और व्यापार जगत शामिल है। पर इस लेख के जरिए विश्वास योग और बुद्धिमान दास ने भाइयों को समझाया कि यहोवा का भी एक संगठन है। मती 24:45, इसमें स्वर्गदूत और धरती पर यहोवा के लोग शामिल हैं। वो खुद को शैतान के संगठन से पूरी तरह अलग रखते हैं। वो साथ मिलकर काम करते हैं और यहोवा के राज का साथ देते हैं। वो शैतान और उसका साथ देने वालों का विरोध करते हैं। इस लेख में यह भी समझाया गया कि 1914 में स्वर्ग में युद्ध छिड़ गया और शैतान और दुष्ट स्वर्गदूतों को स्वर्ग से निकालकर धरती पर फेंक दिया गया। प्रकाशित वाक्य 12:7-9। कुछ भाई बहनों को यह नई समझ अपनाना मुश्किल लग रहा था, पर उस लेख में यह भी लिखा था, अगर प्रहरी दुर्ग के कुछ पाठक इस लेख की बातों से सहमत नहीं है तो उनसे गुजारिश है कि वह प्रभु के वक्त का इंतजार करें और वफादारी से उसकी सेवा करते रहें। ज्यादातर बाइबल विद्यार्थियों को वो लेख पढ़कर कैसा लगा? ब्रिटेन के कॉल पोर्टर, जिन्हें आज पाइनियर कहा जाता है, भाई टॉम एयर ने बताया, प्रकाशित वाक्य 12 की नई समझ मिलने से भाइयों की खुशी का ठिकाना ना रहा, हमारे अंदर जोश भर गया। जब हमें पता चला कि परमेश्वर का राज शुरू हो गया है तो हम ये खुशखबरी सबको सुनाना चाहते थे। हम साफ देख सकते थे कि यहोवा और भी बड़े बड़े काम करने वाला है और हमने सोच लिया कि हम बढ़ चढ़कर उसकी सेवा करेंगे। यहोवा के गवाह होने का एहसास। आज यहोवा के साक्षी अक्सर यशायाह 43:10 में लिखी बात पर चर्चा करते हैं। यहोवा ऐलान करता है, तुम मेरे साक्षी हो, हाँ, मेरा वो सेवक जिसे मैंने चुना है। लेकिन 1925 से पहले इस वचन पर शायद ही हमारे किताबों पत्रिकाओं में चर्चा हुई थी। क्या 1925 में कुछ बदला? इस साल यशायाह 43:10-12 में लिखी बात प्रहरी दुर्ग के पूरे 11 अंकों में पेश की गई। अगस्त 1925 में बाइबल विद्यार्थियों का एक बड़ा अधिवेशन हुआ। ये 8 दिन का अधिवेशन इंडियाना राज्य के इंडियाना पुलिस शहर में रखा गया। कार्यक्रम के परिचय पर जोसेफ एफ रदरफोर्ड की तरफ से एक संदेश लिखा था, हम इस अधिवेशन में आए हैं कि हमें प्रभु से ताकत मिले ताकि जब हम यहां से वापस जाएं तो नए जोश से उसके बारे में गवाही दें। अधिवेशन के हर दिन हाजिर लोगों को बढ़ावा दिया गया कि वे जोश से यहोवा के बारे में गवाही दें, कोई भी मौका हाथ से ना जाने दें। शनिवार 29 अगस्त को भाई रदरफोर्ड ने एक भाषण दिया जिसका शीर्षक था, कमर कस लीजिए। भाई ने समझाया कि गवाही देना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा, यहोवा अपने लोगों से कह रहा है, तुम मेरे साक्षी हो और मैं परमेश्वर हूं। इसके बाद वो साफ साफ आज्ञा देता है, देश देश के लोगों के लिए झंडा खड़ा करो। धरती पर और कोई नहीं जो लोगों के लिए एक झंडा खड़ा कर सके, यहोवा के बारे में गवाही दे सके। सिर्फ यहोवा के लोग ऐसा कर सकते हैं जिन पर प्रभु की पवित्र शक्ति है। यशायाह 43:12-62:10। भाई रदरफोर्ड ने भाषण के बाद एक प्रस्ताव पेश किया जिसका शीर्षक था, आशा का संदेश। इसमें लिखा था कि परमेश्वर के राज की वजह से ही हम आशा रख सकते हैं कि हमें शांति, अच्छी सेहत, आजादी और हमेशा की जिंदगी मिलेगी जो खुशियों से भरी होगी। सभी लोगों ने एक मत होकर प्रस्ताव के जवाब में जोर से हाँ कहा। आगे चलकर इस प्रस्ताव का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया और इसे ट्रैक्ट के तौर पर छापा गया। इस ट्रैक्ट की करीब 4 करोड़ कॉपियां बांटी गईं। हालांकि बाइबल विद्यार्थियों ने यहोवा के साक्षी ये नाम कुछ साल बाद अपनाया, लेकिन वो इस बात को समझने लगे थे कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो यहोवा के बारे में गवाही दें। तस्वीर में ट्रैक्ट दिखाया गया है जिसमें आशा का संदेश प्रस्ताव छापा गया था। चित्र शीर्षक, आशा का संदेश ट्रैक्ट। दिलचस्पी रखने वालों से दोबारा मिलना। पूरी दुनिया में बाइबल विद्यार्थी जोर शोर से प्रचार कर रहे थे और उनकी गिनती बढ़ रही थी। संगठन ने सबको बढ़ावा दिया कि वो किताबें पत्रिकाएं बांटने के अलावा उन लोगों से दोबारा जरूर मिले जो और जानना चाहते हैं। जैसे आशा का संदेश ट्रैक्ट बांटने के अभियान के बाद ध्यान दीजिए कि बुलेटिन में किस बात का बढ़ावा दिया गया। उन लोगों से दोबारा मिलने जाइए जिन्हें आपने आशा का संदेश ट्रैक दिया था, फिर चाहे उन्होंने और कोई किताब ली हो या नहीं।
फुटनोट।
अब इसे हमारी मसीह जिंदगी और सेवा सभा पुस्तिका कहा जाता है।
फुटनोट समाप्त।
जनवरी 1925 के बुलेटिन में टेक्सस राज्य के प्लेनो शहर के एक बाइबल विद्यार्थी का अनुभव बताया गया। उसने कहा, हम ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि जब हम किसी ऐसे इलाके में जाते हैं जहां पहले भी प्रचार हो चुका है तो हमें ज्यादा अच्छे नतीजे मिलते हैं। हमारे शहर में एक ऐसा इलाका है जहां पिछले 10 सालों में करीब 5 बार प्रचार हो चुका है। हाल ही में मेरी माँ और बहन हेनरिक्स दोबारा उस इलाके में गए और उन्होंने इतनी किताबें दी जितनी की पहले कभी नहीं दी थी। पनामा देश के कॉलपोर्टर ने एक चिट्ठी में लिखा, मैंने देखा है कि कई लोग जो पहली बार में हमें घर से भगा देते हैं वो दूसरी या तीसरी बार सुनने के लिए तैयार हो जाते थे। पिछले साल मैंने खासकर उन लोगों को प्रचार किया जिनसे मैं पहले मिल चुका था और मुझे कई अच्छे नतीजे मिले।
नजरें आगे की ओर।
1925 के आखिर में भाई रदरफोर्ड ने सभी कॉलपोर्टर भाई बहनों को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने उस साल के दौरान हुए प्रचार काम के बारे में बताया और आने वाले साल में भी जोश से प्रचार करने का बढ़ावा दिया। उन्होंने लिखा, बीते साल में आपने कई लोगों को दिलासा दिया। इस काम में शरीक होना एक सम्मान भी है और खुशी की वजह भी। आने वाले साल में आपको यहोवा और उसके राज के बारे में गवाही देने के और भी कई मौके मिलेंगे। इस तरह लोग जान पाएंगे कि कौन यहोवा के सच्चे उपासक हैं। आइए हम साथ मिलकर अपने परमेश्वर और महान राजा यहोवा की महिमा करते रहें।
1925 के खत्म होते होते भाई ब्रुकलिन बेथल में निर्माण काम करने की तैयारियों में लग गए। अगले साल 1926 में हमारा संगठन एक इतने बड़े प्रोजेक्ट का निर्माण करने वाला था जितना पहले कभी नहीं किया था।
तस्वीर में दिखाया है कि एक नई इमारत का निर्माण बस शुरू ही हुआ है और वहां कई भाई काम कर रहे हैं।
चित्र शीर्षक।
1926 में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन शहर में एडम स्ट्रीट में चल रहा निर्माण काम।
लेख समाप्त।